प्रोटोकॉल है, वो जो प्रक्रिया है, वो जब मरीज की असाध्य बीमारी का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, तब से वो केयर शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो एंड ऑफ लाइफ केयर के रूप में मरीज को प्राप्त होती है। और इसमें ये सब हम लोग मरीज को आराम देने का प्रयास क्यों करते हैं कि जब तक उसका मन, उसका शरीर वेदना रहित नहीं होता है, जब तक सामाजिक दृष्टि से उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तब तक एक आत्मा के रूप में वो अपनी अंतिम यात्रा करने के लिए तैयार नहीं होता है रियल तरीके से। ही इज नॉट रेडी फॉर एक्चुअली द जर्नी। तो उसको ये अंतिम यात्रा की तैयारी करने के लिए बाकी सब तैयारियां करते हैं, सपोर्ट सर्विस देते हैं। और ये अंतिम यात्रा क्या है? अंतिम यात्रा का एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए तो आत्मा जो है वो भगवान के पास जाना चाहती है। आत्मा भगवान का अंश है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ, रिलीजियस लाइफ में हो, लेकिन हकीकत यही है कि हम सब एक पिता के पुत्र हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं और इस विश्व में अलग अलग शरीर धारण करके कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु का, बुढ़ापे का और बीमारी का दर्द भोग रहे हैं। और जब अंतिम समय आता है शरीर छूटने का, तो मृत्यु के समय आत्मा जो है दोबारा इस जन्म में न आ जाए, पुनः जन्म मृत्यु का कष्ट भोगने के लिए, पुनः बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोगने के लिए दोबारा इस कष्टमय दर्दमय दुनिया में न आए और अपने पिता के पास प्रेममयी प्रेमपूर्ण सेवा में अपने आप को सम्मिलित करे। ये इस आध्यात्मिक तैयारी का मूल अंग है। और इसके लिए उस मरीज को ज्ञान देना, उसको काउंसलिंग करना, उसकी मन की तैयारी करना, उसको भगवान के साथ अधिक अधिक जोड़ने का प्रयास करना, उनके नाम के माध्यम से, उनके भजन के माध्यम से, उनके ग्रंथ जो है, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, भगवद गीता हो, इनके दिए हुए वचनों को उनके पास बोलना, उनको समझाना, पाठ करना उनके लिए, और उनका मन ये न के न प्रकार न किसी प्रकार से भगवान में ही लगा रहे, इसका प्रयास करना, ये स्पिरिचुअल केयर का प्रमुख उद्देश्य। और इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में पूरा एक डिपार्टमेंट खोला है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर। इस डिपार्टमेंट में कई सारे हमारे कार्य होते हैं मरीजों के लिए, बहुत सारे कार्य जो मरीज यहां पर आते हैं, एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उनके लिए है। लेकिन एक विशेष अंग ऐसा है जो खास करके स्पेशलाइज्ड केवल जाने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं अब तक जब मरीज के जाने की अवस्था होती है तो बहुत सारे अलग प्रकार के विचारधाराएं उसके मन में चलती हैं। हमारे में से कई लोग वृद्ध होंगे, उनको पता भी होगा कि हमारे बहुत कम समय बाकी है, लेकिन फिर भी जब अंतिम समय आता है तो सबकी विचारधारा बदली जाती है, अलग प्रकार की आदमी सोचता है क्योंकि उसको जाना है यहां से। तो उस सोच विचार को अनुकूलता से समझते हुए, जानते हुए, कैसे उस व्यक्ति की भावनाओं को भगवान के चरणों की ओर मोड़ा जाए, उसके उसके धर्म के अनुसार, उसके उसके धारणाओं के अनुसार, उसके प्रवृत्ति के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, कैसे उसको भगवान के ओर मोड़ा जाए, ये इस पूरे डिपार्टमेंट का ये जो अंग है एंड ऑफ लाइफ केयर, इसकी विशेषता है। और हमने यहां पर भी ये ऑस्पिस खोला है और अभी नई बिल्डिंग पीछे बनेगी तो एक विशेष मंजिल उसको दी जाएगी। और पूरा तरीका इसका अलग अलग होता है, जिस तरह से हम मरीज को हॉस्पिटल में रखते हैं वैसे उनको वहां रखते नहीं, एक घर का वातावरण निर्माण करते हैं, उनके पर्दे भी ऐसे होते हैं कि जैसे घर के हों, रंग जो है वो भी घर के जैसा होता है, कोई इंस्टीट्यूशनल वातावरण वहां पर नहीं होता है, संस्था जैसा वातावरण नहीं होता है, घर जैसा वातावरण होता है। उनके रखना, बोलना, करना, उनके साथ बात करना के लिए नर्सिंग केयर जो है कई घंटे चलती है, काउंसलिंग भी कई घंटे चलता है, दिल की बातें होती हैं, दर्द निवारण करने का अथक प्रयत्न करते हैं, ताकि मरीज को आराम मिले, शांति मिले, और उस शांतिमय आराममय वातावरण में वो विचार करे कि मैं अभी कैसे भगवान से मिलना चाहता हूं, किस तरह से अपने आप की तैयारी करूंगा। और ये जो लोग समझते हैं दर्द वाली घटना, परेशानी वाली घटना, वो कैसे मैं उत्सव के रूप में उसको रूपांतरित करूं। और मैं आपको केवल कविता में भाषण नहीं दे रहा हूं यहां पर, कि मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया है, जब से इसकी पढ़ाई की तब से 6 साल से अभी मैं देख रहा हूं कितने सारे मरीज कितने आनंदी अवस्था में इस दुनिया से गुजर चुके हैं। जैसे हमारी मीनाक्षी पाई, उनके पति यहां पर कुछ है बैठे हुए नहीं है, बहुत साल पहले जब हमने हॉस्पिस पढ़ाई करने के पहले की बात है, उसको कैंसर हुआ था, छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, और एक पति एक बच्ची दो ही परिवार के सदस्य थे, बहुत दुखी थी बेचारी। जब हमारे संस्था में आई तुम्हारे पास उसको फोटो है, उसको सब कुछ बताया गया कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य कैसे होगा, पति का भविष्य कैसे होगा, तुम्हें क्या करना है, दर्द विरहित किया गया उसको, उसको ऐसे फोटो है 3 दिन पहले मृत्यु के, इतना बड़ा स्माइल उसके चेहरे पर है। और कई माताओं का ऐसा फोटो हमारे पास है जो मृत्यु के शैया पर लेटे हुए बर्थडे केक काट रहे हैं बड़ी खुशी से। और ये हमने अनुभव किया कि ऐसे हो सकता है, ये केवल फिलोसॉफी या केवल तत्व ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको उतार सकते अपने जीवन में। वो जो मीनाक्षी पही है, जब वो गुजर गई तो उसकी बेटी जो है उसके घर में भोजन बनाना बंद हो गया, तो यहाँ से होटल से किसी नेबर से यहाँ से वहां चालू हो गया, तो हमने उसको हमारे गोपाल गार्डन हाईस्कूल में एडमिशन दिला दिया, जहां पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन स्कूल में मिलता है। और उन्हें कोई मांस और अंडा खाने की इच्छा नहीं थी, जो बाहर कभी कभी उनको देखना पड़ता था उसको, तो उसको स्कूलिंग की व्यवस्था की गई, डिस्काउंट में की गई, और दोनों बेटे और माता पिताजी दोनों भगवान की भक्ति में आए। बहाना था पत्नी और माता के देहांत का, लेकिन जीवन ऐसा मोड़ पे चला गया कि आज दोनों इतने खुश हैं, भगवान के महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, और अलग अलग यात्राओं में आते हैं, भगवान के धाम का दर्शन करते हैं, घर में रोज भगवान का पठन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सर्वांगीण विकास की बात है। हो सकता है किसी की मृत्यु के कारण शुरू हो गई हो, लेकिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये जो 4 अंग विकास के हैं, ये पूर्णता से विकास इस संस्था के माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से होता है। हमें सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबको इस एक ना एक दिन इस परीक्षा का सामना करना है। लेकिन देखना है कि हमारे पहले जो व्यक्ति जा रहा है वो क्या दुखी होकर जा रहा है, कष्टी होकर जा रहा है, मन में कश्मकश रखे जा रहा है, कि सब कुछ हमारे अपने कर्तव्य को निभाकर विरक्त होकर भगवान का भजन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने प्रियतम भगवान को प्रेममय संबंध में जुड़ने के लिए जा रहा है। और ये हम सब कर सकते हैं, क्योंकि मरणासन्न व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, वो तो बिस्तर में पड़ा है बेचारा दर्द में, उसके ऊपर दवाई चल रही है दर्द की, और काफी शायद उसको चलने को नहीं होता होगा, वो स्ट्रेचर पे होगा, तो कई ऐसी चीजें वो जो नहीं कर सकता है। तो ये हॉस्पिस की टीम जो है, ये 4 अंग होते हैं उसके अंदर, और 4 ही प्रधान अंग है, उसके साथ में आगे फिजियोथेरेपी भी है, फार्मासिस्ट भी है, म्यूजिक थेरेपिस्ट भी है, योगा थेरेपिस्ट भी है, एक्यूपंक्चर भी है, एक्यूप्रेशर भी है, मसाज भी है, म्यूजिक बज रही है। तो जो मरीज को आराम दे, चाहे वो मरीज को वायलिन का कुछ म्यूजिक सुनना है वो सुनाना उसको, ताकि उसको दिल में हृदय में प्रसन्नता प्राप्त हो, ये इस संस्था का कर्तव्य है। जो जो पृथ्वी पर उपलब्ध है और जो हमारे को मिल सकता है और मरीज को आराम दे सकता है, वो हम लोग उसको पैदा करते हैं। वहां आपको शायद सुनकर खुशी होगी, पता भी होगा आपको, वृंदावन में हमारा एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल 40,000 स्क्वायर फीट के अंदर 23 मरीजों को भर्ती करने का सुंदर व्यवस्था हमने किया है, केवल एक विषय पे। यहाँ पर तो पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन वृंदावन में केवल हॉस्पिस, केवल मरणासन्न लोगों को विदा करने के लिए सम्मान के साथ, आदर के साथ, आनंद के साथ विदा करने के लिए संस्था खड़ी करके रखी, भक्ति वेदांत हॉस्पिस वृंदावन। और इसके कार्य को देखते हुए अभी लोग मांग कर रहे हैं कि और भी धाम में भगवान के भी इसको स्थापन किया जाए, जैसे मायापुर है, जैसे और भगवान के तीर्थ हैं, क्योंकि भगवान के धाम में जब कोई शरीर छोड़ता है तो शास्त्र में लिखा है कि वो भगवान के पास जाता है। भगवान के तुलसी का कोई स्पर्श करता है मृत्यु के समय, भगवान के द्वारा पुनित किया हुआ जल प्राप्त करता है, भगवान का नाम सुनता है, भगवान की प्रार्थना सुनता है, भगवान के वचन सुनता है, भगवत वातावरण में शरीर छोड़ता है। भगवान ने कहा है यम यम वापि स्मरण भावक त्यजते अंते कलेवरम, अंत काले च मावेम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। शरीर को छोड़ते समय अगर कोई मुझे याद करता है तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो हमारे हॉस्पिस मूवमेंट का मूल मकसद क्या है, मैं हमेशा हमारे डॉक्टर विनीता और कमल चित्ते और प्रशोभ जी से चर्चा करते रहता हूं कि इस हमारे मूल उद्देश्य को हमें भूलना नहीं चाहिए। चाहे हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही विविधतापूर्ण हो, कई सारे कार्य हम करते होंगे उसके अंदर, लेकिन मरीज को भगवान से जोड़ देने का जो ये अंतिम कार्य है, हमारे मेडिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल मेथड से, तरीके से, इसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि फाइनल जर्नी का मतलब क्या है, अंतिम यात्रा आत्मा की केवल यहां से भगवान के धाम में होती है।
हम रास्ता चुकते हैं इसलिए बार बार यहां आ जाते हैं और अलग अलग योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑस्पिस के माध्यम से जीव का जो अनंत काल से कष्ट चलते आ रहा है वो समाप्त हो जाए, दोबारा हम लोग यहां पर नहीं आए, क्योंकि हम सब लोग यहां पर जेल में हैं, इस शरीर के जेल में, इस विश्व के जेल में, जन्म मृत्यु के जेल में है। छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं सकते। इसलिए भगवान ने पुराण में, बाइबल में, टौरा में, ग्रंथ साहिब में, भगवदगीता में सब मार्ग बताए हैं, और आप अगर स्टडी करेंगे सभी मार्ग, ये एसेंशियली ये सारे मार्ग सेम है, भगवान का नाम सब में सेम है और भगवान का नाम जपना की जपने की प्रक्रिया सब धर्मों में सेम है। और सब धर्म ये जानते हैं कि मरने के समय उसका नाम लेना है जो हमारे पिता है, ऐसे कोई धर्म इस पर कोई विवाद नहीं करता। बाकी डिटेल्स में शायद अलगता होगी, लेकिन ये बात, इस बात पर कोई मतभेद या विवाद नहीं है कि भगवान का नाम जीव को अंतिम समय सुनाना है और ऐसा वातावरण निर्माण करना है, उसकी मन की तैयारी ऐसे करनी है पहले से ही कि वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि मुझे कैसे भी करके अंत में और कुछ तो ध्यान में आते हुए भगवान का नाम ही ध्यान में आए। कभी कभी मृत्यु के समय ऐसे कहा गया है कि अलग अलग प्रकार के विकार मन में आते हैं, बहुत प्रकार के विचार, भय और अलग अलग भावनाएं व्यक्त होती है और मन उस व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब बाहर से उसको भगवान का नाम सुनाया जाता है तो हो सकता है कि उसका भटका हुआ मन तुरंत भगवान के नाम को सुने और उसी की याद करे, उसी की याद में अपना शरीर छोड़ दे। जब ऐसे होता है तो व्यक्ति सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है और जब ऐसे होता है तो यमदूत यानी कि मृत्यु के फरिश्ते वहां पर पहुंच नहीं सकते, मैसेंजर्स ऑफ डेथ कैन नॉट रीच जहां पर भगवान का नाम का जप होता है, भगवान के नाम को पुकारते हैं। बड़ी लंबी कथा है हमारे भागवत में कैसे मृत्यु के देवता यमराज ने आदेश दिया है अपने सेवकों को, आपको वहां नहीं जाना है जहां पर भगवान का नाम गूंजता है, भगवान के नाम की ध्वनि जहां जहां तक पहुंच जाती है उस सीमा तक आपको जाना नहीं है, उस व्यक्ति के पास जाना छोड़ ही दो, जहां तक वो गूंज भगवान के नाम की हो रही है वहां तक आपको प्रवेश नहीं है, वो आपका एरिया नहीं है, इट इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन। तो हम क्या नक्की करते हैं, क्या निश्चित करते हैं कि उस व्यक्ति, उस आत्मा के पास में कोई मृत्यु का देह पैसेंजर पहुंचे नहीं, उसको सराउंड करते हैं, उसको पूरा ढेर लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन लगाते हैं। अगर वो क्रिश्चियन हो तो जीसस की माला करने को लोगों को लगाते हैं, उनके रिश्तेदारों को। हमारे पास कई पिक्चर्स हैं, मृत्यु के समय सब जगह पिक्चर्स लेना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि भावना बहुत उच्चतर पर होती है उस समय। कभी कभी फोटो निकाले हुए हैं, उसमें हमने देख दिया है फोटो, उनको रोजरी दिया है, उनको तस्वीर दिया है, उनको कहा है कि आप पढ़ो, साथ साथ में पढ़ते रहो, अगर श्रद्धा है तो हम भी पढ़ते रहेंगे और आप भी पढ़ते रहना। उद्देश्य यह है कि हॉस्पिस की मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट के अंदर सारे भेदभाव नष्ट हो जाते हैं। मैंने देखा अपने आंखों से, सारे धर्म के, जाति के, भाषा के, देश के, रंग के, हाँ सब भेद नष्ट हो जाते हैं और केवल एक सत्य बचता है कि हम भगवान के अंश हैं, आप भगवान के अंश हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करना चाहते हैं और मिलजुल कर हम एक दूसरे को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही इस हॉस्पिस संस्था का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम शुरुआत का और मध्य का यही मूल उद्देश्य है और इसमें सारे समाज का हाथ है। ऐसे नहीं कि केवल डॉक्टर्स और साइकोलॉजिकल काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स और स्पिरिचुअल केयर गिवर्स, चैपलेंस, केवल इनका ही हाथ भाग है इसके अंदर, पूरा समाज इनकी सहायता करते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर दूर के मित्र जो हैं, मेडिकल टीम, पहचान के लोग, नहीं पहचान वाले लोग, सब लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है हर एक जीव कर सकता है। मेरी आपकी पहचान नहीं होगी और किसी की मृत्यु होती होगी उसकी पहचान नहीं होगी, अगर मुझे वहां बुलाया जाता है तो उस जीव को अपना भाई समझ कर मैं प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं शास्त्र के आधार पर, क्योंकि हम भगवान के बालक हैं, हम सब लोग भाई और बहन हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। उस व्यक्ति को उस समय कैसे अच्छा लगेगा, कैसे प्रसन्न लगेगा, उस भावना से करना है। अगर वो भाई क्रिश्चियन है तो उसको जीसस के नाम लेकर प्रसन्न करना है, अगर वो मुस्लिम है तो उसको अल्लाह का नाम लेकर याद करके प्रसन्न करना है, अगर वो हिंदू है तो राम कृष्ण और उसके भगवान के नाम लेकर उसको प्रसन्न करना है, जिस रूप से रूप में उसने भगवान को देखा है और समझा है उसी रूप में उसको भगवान को याद करने में उसको मदद करनी है। इसलिए मुझे इस पर बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिस की स्टडी करने गया था देखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे भेद नष्ट हो जाते हैं और एक शुद्ध स्तर पर आदमी आकर एक दूसरे की सहायता कर सकता है, तो पूरा जीवन यहां पर भेदभाव करने में खत्म हो जाता है। मैं ऐसा हूं, आप साउथ इंडियन है, आप नॉर्थ इंडियन है, मैं यही भाषा ही है, आपकी भाषा है, आप उस देश के हैं, मैं इस देश का हूं, अनंत भेद है हमारे अंदर, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म है कि हम भगवान के अंश हैं। तो हमारे डॉक्टर विनीता, हमारे नर्सेस कशोक कोडापल्ली, ये कशोक कोडापल्ली जो है ये केटरिंग के ग्रेजुएट हैं और चीफ शेफ के रूप में काम करते थे, हमारे पास वॉलंटियर करके काम शुरू किया था, लेकिन इस कार्य को देखते इतने प्रेरित हो गए कि अपना पूरा करियर त्याग के वो हॉस्पिस में ज्वाइन हो गए। और ऐसा कर्म धर्म सहयोग था कि इनके पिताजी भी उन्हीं के अंडर, हमारे डिपार्टमेंट के अंडर ही उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। तब उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जो मैं अभी वॉलंटियर के रूप में कर रहा था, आज मैंने मेरे पिताजी के देहांत के समय खुद देखा कि क्या चीज है ये, इससे क्या क्या लाभ होता है, और प्रेरणा मिली। वे पूर्णतः समर्पित है इस बार के लिए, वे चेहरे पर रंग लगाकर आपके लिए नाटिका करने के लिए यहाँ पर, नाटिका हुई क्या, होने वाली है, तो वही प्रशोभ अभी चेहरे पर रंग लगाकर आपके लिए नाटिका करने वाली। ऐसे अपने पेशे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर सकता है, अगर उसके अंदर प्रेरणा नहीं है तो नहीं कर सकता है। इनके अंदर ऐसी दिव्य प्रेरणा भगवान की दया से हुई और ऐसे अनुभव भगवान ने उनको दिए, वो पूर्णतः आज ये हॉस्पिस मूवमेंट में समर्पित है। और ऐसे समर्पित जीव हम चाहते हैं, क्योंकि अंतिमतः जब मौत होती है तो उस मरे हुए व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, एक ही पहचान बचती है मृत शरीर, और जो जीव जो आत्मा है चली जा चुकी है, कोई झगड़ा नहीं बचता है उसके बाद में, कोई विवाद नहीं बचता है, कोई संघर्ष नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, वो सत्य है जीवन का। अगर उस सत्य की स्थिति में अगर हम जीवन भर जिएंगे, कोई विवाद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई, तो जीवन जितना सुंदर बनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिस मूवमेंट से जब हमारे पास मरीज रजिस्टर होते हैं उसके समय से, उस समय से उसे ऐसी स्थिति में लाने का प्रयास किया जाए जिससे वो सारे संघर्षों से, कश्मकश से, विवादों से मुक्त हो जाए और अपने प्रिय भगवान को, अपने प्रिय बालकों को, भगवान के बालकों के सहायता से उनको मिलने में यशस्वी हो जाए। ये हमारे संस्था का उद्देश्य है और भगवान की दया से काफी अभी वृंदावन के हॉस्पिस के अंदर आज तक 950 लोग हमारे केयर के अंदर अपना शरीर छोड़ चुके हैं और अभी भी कई सैकड़ों मरीज रजिस्टर्ड हैं। दूर दूर गांव तक उनको होम केयर भी देते हैं और इन पेशेंट केयर भी देते हैं, मरीजों के देखभाल करने वाले लोग जाते हैं तो उनको भी केयर देते हैं, उनको भी फ्री करके उनकी मरीज की देखभाल 15 दिन के लिए करते हैं, उसको रेस्पाइट केयर कहते हैं। कई प्रकार के केयर्स है इसके अंदर, मरीज और उनके साथ साथ वाले जितने निकट के परिवार के सदस्य हैं सब लोगों को इसमें सहायता करते हैं। और ये सेवा पेशेंट के मृत्यु पर समाप्त नहीं होती है, ये सेवा पेशेंट की मृत्यु के बाद में उनके जो दुखी रिश्तेदार हैं उनको भी दी जाती है। 13 महीने तो देते हैं उसको, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के बाद भी उसको देते रहते हैं। तो ये सर्वांगीण सेवा है, शारीरिक, मानसिक, सोशल, सामाजिक और आध्यात्मिक, और मरीज के साथ साथ सारे परिवार को ये बहुत समय तक दी जाती है, इसलिए उसको सर्वांगीण सेवा कहते हैं। आइए हम सबको आपको आमंत्रण देते हैं, आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप जितना हो सके उतना इसमें सहयोग दीजिए, अपने पड़ोस में, अपने नाते में, रिश्ते में, अपनी बिरादरी में कोई गुजरता होगा दौड़ के जाइए वहां पर और भगवान का नाम का चिंतन करने का प्रयास कीजिए। मैं तो इनको कहता हूं कि अगर तो आप बस में जा रहे हो और आप बस में आपकी दिशा इस तरफ है और सामने आपके रोड पे कोई मृत्यु हो रही है, 1-2 मिनट के लिए हाथ जोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो, हो सके तो भगवान इसको आपकी स्मृति दिला दे। मैं प्रार्थना करता हूं इस दुनिया के जंजाल से मुक्त हो रहा है उसे आपकी स्मृति देंगे, दोबारा नहीं आएगा, इतना तो कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं उसके लिए, एक केवल भावना का प्रश्न है जो आपको अर्पण करना है। और ऐसे भगवान ने हमको हर समय पर ऐसे अनंत भावनाओं को दे दिया है, हम एक समय का एक भावना उस व्यक्ति के लिए अर्पण कर सकते हैं। और अगर हम मरने वाले लोगों को जीवन भर सहायता करते रहेंगे तो हमारा समय आएगा, भगवान अनंत लोगों को भेजेंगे आपके लिए और आपको भी सहायता करेंगे उनकी याद करने के लिए और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। इस अंदरूनी स्वार्थ से ये सब कार्य होता है, लेकिन इतना ये स्वार्थ अच्छा है इसमें अनंत परमार्थ छुपा हुआ है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति को होना चाहिए जिसमें परमार्थ छुपा हुआ है। तो आपको विनती करते हैं और आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं कि ये बहुत ही इंटेंस यानी कि तीव्र कार्य है, इट्स अ वेरी इंटेंस एक्टिविटी, उसमें हम लगातार लगे रहें, हमारी टीम भी बढ़ती रहे, और इस भावना को समझते रहे और लोगों को भगवान के द्वार तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे, इसके लिए हम आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें शक्ति प्राप्त हो और हमारी प्रेरणा बनी रहे इसी मार्ग पर, कि आपसे हम विनती करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जब शरीर को साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, तो हमको कष्ट होता है। जब इस भावना से हम मुक्त हो जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर कष्ट नहीं होता है। कष्ट तब तक होता है जब तक आप किसी वस्तु से बद्ध हैं। आप यहां बैठे हुए, समझो अभी आपकी गाड़ी नीचे पार्क हो गई, समझो, बता रहा हूं आपको, जब तक आप यानी आत्मा शरीर से, मन से, समाज से जुड़े हुए हैं, तब तक आपको उसका दर्द होता है। आत्मा को जब आपसे उस भावना से मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा को दर्द होना समाप्त हो जाता है। जैसे आप यहां बैठे हैं, आपकी गाड़ी नीचे पार्क है, किसी ने आके ठोक दिया उसको, तो आपको बड़ा दुख होगा। क्यों दुख होगा? आपको तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपका मन उसमें लगा हुआ है कि मेरी गाड़ी है, नई नई लाई हुई है, अच्छी से संभाल के रखी थी, किसी ने ठोक दिया उसको, उस प्रकार का दर्द है। जब आप उससे जुदा हो जाएंगे उस भावना से कि ये मेरा है और ये मैं हूं, दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो आध्यात्मिक विद्या क्या है? आध्यात्मिक विद्या वो विद्या है जो आपको, हमको इस शरीर के, समाज के, मन के बंधन से मुक्त करने को सहायता करती है। और शुद्ध अवस्था में आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद, फुल ऑफ हैप्पीनेस, उस स्थिति में लाने के लिए अध्यात्म सहायता करता है, मजहब सहायता करता है। तो हमें वो देखना है। आत्मा मूलतः कभी दुखी नहीं होती। जब वो किसी दुखी वस्तु से अपने आप को जोड़ लेती है, शरीर तो दुख का सागर है, तो दुखी हो जाती है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस यस, वन मोर क्वेश्चन। यस, लेकिन हमारा साइंस ऐसा है, हाँ, तो दुर्भाग्य की मृत्यु होती है, एक भी जिसमें ऐलान होता है कि कोई मरने वाला है, और एक हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु होती है। उसमें हम लोग वातावरण उत्पन्न कर पाएंगे नहीं, मेरे को गारंटी कि हमको पता ही नहीं। लेकिन जिसको ये लोग हैंडल करते हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस है, अधिकतर पे कैंसर है, HIV है, और कोई बड़ी बीमारियां हैं, मल्टीपल सिरोसिस है, ब्रेन का कुछ ट्यूमर है, जिसको समय प्राप्त होता है, हमको समय मिलता है, पता है कि इसको 3 महीने, इसके बाद 2 महीने, इसके बाद 1 महीना है, तो समय पूरी कोशिश करते हैं। और यहां तक कोशिश करते हैं, अगर कोई हार्ट अटैक से भी आया और 5 मिनट में मर गया, फिर भी उसको हम गंगा जल, तुलसी, प्रार्थना, प्रणाम सब करते हैं उसके लिए, क्योंकि आत्मा जो है रहती है, जब तक शरीर का संस्कार नहीं होता है, आत्मा वही घूमती रहती है, उसके लिए भगवान की आवाज, भगवान का ध्वनि, प्रार्थना सब कुछ करते हैं उसके लिए। जब शरीर का संस्कार होता है, तब फिर आत्मा अगले यात्रा के लिए आगे चली जाती है। इसलिए ये जो प्रक्रिया जो है, ये मृत्यु के पहले, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी की जा सकती है। मेरी जो ग्रैंडमा है वो 73 में गुजर गई थी, आज भी उसके तिथि के दिन में मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, इस विश्वास के साथ में, क्योंकि प्रार्थना ये आत्मा और आत्मा के बीच में होती है, भगवान के लिए की जाती है, क्योंकि आत्मा और भगवान दोनों चिरंतन हैं। इसलिए मेरी ग्रैंडमा जहां पर भी होगी, वहां तक मेरी प्रार्थना पहुंचती है, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हॉस्पिस की प्रक्रिया जो है, ये इटर्नल प्रोसेस है, डजंट एंड विद डेथ ऑफ समबडी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।